बड़ा अजीब लगता है मुझको तेरा ये शहर, कहीं मिलने की खुशी तो कहीं बिछड़ने का कहर। किसी को मिलती हैं यहाँ जमाने भर की खुशियाँ, तो किसी का सब कुछ लूट लेता है ये शहर। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि जोशी
और मैं नरेंद्र तिवारी एक बार फिर स्वागत करते हैं आप सभी का प्रोग्राम जब चलें शहर की ओर में।
दोस्तों, शहर के बारे में लोगों की अपनी अपनी धारणाएं हैं
और खास तौर से बड़े शहरों के बारे में। किसी को लगता है कि शहर में आकर सारे सपने पूरे हो जाते हैं,
तो किसी को लगता है कि ये शहर लोगों को उनके अपनों से दूर कर देता है, उन अपनों से जिन्हें वो शहर आते समय पीछे छोड़ आते हैं।
तो दोस्तों, हमें लगा कि क्यों ना आज लोगों से इसी विषय पर बात की जाए कि वो इस चकाचौंध भरी दुनिया
यानी के बड़े शहरों के बारे में क्या सोचते हैं।
वो कौन सी बात है जो उन्हें शहरों के बारे में सबसे ज्यादा अच्छी लगती है।
तो दोस्तों, हम सुनेंगे लोगों की राय, लेकिन धारावाहिक शहर की ओर सुनने के बाद।
लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि प्रवास से जुड़े मुद्दों पर आधारित ये कार्यक्रम जब चलें शहर की ओर फोर्ड फाउंडेशन और इक्वल एक्सेस के वित्तीय सहयोग से आइडियोसिंक मीडिया कंबाइन द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।
और अगर आप हमसे प्रवास से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहते हैं, तो आप हमें अपना सवाल हमारे फोन नंबर 9197176782 पर SMS कर सकते हैं। और आइए अब आपको सुनवाते हैं धारावाहिक शहर की ओर की 40वीं कड़ी।
दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने सुना चंदर और गजेंद्र शिपिंग की जॉब के लिए दिल्ली से मुंबई आ जाते हैं। चंदर प्लेसमेंट ऑफिस में फोन करता है और उसे कहा जाता है कि वो 2 दिन बाद आकर मिले। चंदर और गजेंद्र का मुंबई में रहने का कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए उन्हें प्लेटफॉर्म पर ही रात गुजारनी पड़ती है, जहां उनकी मुलाकात दर्शन से होती है। अब सुनते हैं आगे की कहानी।
ये मुन्ना, इस समय कौन हो सकता है रे?
अरे अपन को क्या मालूम, कहीं पुलिस तो नहीं?
ये मुन्ना, तो रुक, मैं देख के आता हूँ। कौन है?
जग्गू, मैं हूँ, दर्शन।
ये तो अपना दर्शन है। रुक, आ रहा हूँ।
अरे क्या यार, इतनी देर लगा दी दरवाजा खोलने में।
ये तू बोल नहीं सकता था क्या?
चल अब अंदर आने दे। आ चंदर, अंदर आ।
ए दर्शन, ये दोनों मुना लोग कहाँ से पढ़ के लाए रे?
अरे यार, ये मेरे दोस्त हैं, मेरे ही गांव से हैं। ये चंदर है और ये क्या नाम है तुम्हारा?
गजेंद्र।
कितना अच्छा यारी है रे, इतना गहरी के नाम भी नहीं मालूम।
चुप कर जग्गू।
अरे दर्शन, तू इन लोगों को इधर क्यों लेकर आया?
अरे यार मुन्ना, 2 दिनों की तो बात है, जैसे ही नौकरी मिल जाएगी ये कहीं और चले जाएंगे।
और बाप, पुलिस अगर यहाँ आई तो?
पुलिस? अब देखिए, ऐसा करते हैं, हम चले जाते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से आप लोगों को कोई परेशानी हो।
हाँ दर्शन, गज्जू ठीक कह रहा है, हम प्लेटफॉर्म पर ही ठीक थे, और सिर्फ 2 ही दिन की तो बात है, नौकरी मिलते ही हमारा कहीं ना कहीं रहने का इंतजाम हो जाएगा।
अरे क्या यार, क्यों बेकार में डरा रहा है इन्हें, बस 2 ही दिनों की तो बात है।
ठीक है ठीक है, तेरे दोस्त है ना, इसलिए रहने दे रहे हैं, लेकिन 2 दिन का मतलब 2 दिन।
नाम मधु कोथियाल, पिता का नाम।
अरे बौजी, क्या कर रही हो?
बीए का फॉर्म भर रही हूँ।
अरे वाह बौजी, अब तो आप इस गांव की सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी बुआरी हो जाओगी।
हाँ।
अच्छा बौजी, वैसे बीए करके आप क्या करोगी?
मैं टीचर बनूंगी, बच्चों को पढ़ाऊंगी।
फिर तो मैं सबको इतरा कर बता सकूंगी, मेरी बौजी मास्टरनी है।
अरे इसमें इतराने वाली कोई बात नहीं है छुटकी।
अरे इतराने की बात कैसे नहीं है? देखना, जब आप मास्टरनी बन जाओगी तब सबको आप पर गर्व होगा।
सबको?
हाँ, चंदर भैजी, हरेंद्र भैजी, मीरा बौजी, मुझे और माँ को।
माँ को भी? पर उन्हें तो मेरा पढ़ना पसंद ही नहीं है।
अरे बौजी आप देखना, जब गांव के लोग कहेंगे ना कि फूलमती की बुआरी मास्टरनी बन गई है, तो माँ खुशी से फूली नहीं समाएगी।
सच छुटकी?
हाँ बौजी। बौजी आपको पढ़ता देख मैं ये सोच रही हूँ कि मेरी ही अकल मारी गई थी जो मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, काश मैंने उस वक्त आपकी बात मान ली होती।
छुटकी, जो गलती तुमने की थी उसे सुधारा भी तो जा सकता है।
मतलब?
मतलब ये कि तुम अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर दो।
सच बौजी? लेकिन क्या माँ मुझे आगे पढ़ने देगी?
माँ जी से मैं इजाज़त ले लूँगी।
सच?
हाँ बिल्कुल सच। अच्छा चल, अब मुझे जरा ये फार्म भरने दे ताकि इसे आखिरी तारीख से पहले पहले जमा कर सकूँ।
ठीक है, आप फार्म भरिए, मैं आपका जूस का काम कर देती हूँ।
ठीक है।
नमस्ते माँ। नमस्ते पिताजी।
खुश रहो बेटा।
माँ ये राजेश है।
नमस्ते पिताजी। नमस्ते माँ।
जीते रहो बेटा।
सफर कैसा रहा आपका? आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई?
नहीं बेटा, परेशानी तो कोई नहीं हुई।
अच्छा चलिए घर चलकर बातें करते। लाइए अपना सामान दीजिए, मैं लेकर चलता हूँ।
अरे नहीं बेटा, अब मैं उठा लूंगा।
अरे पिताजी, जब मैं हूँ तो फिर आप क्यों ये सब करेंगे? लाइए दीजिए मुझे।
ठीक है बेटा, ये लो।
जी
दर्शन, उस्ताद ने तुझको बुलाया रे।
ठीक है। चंदर, वो मुझे जरा काम से जाना है, मैं सुबह तक लौट आऊंगा। है
पर दर्शन, इतनी रात को?
ये रात और दिन के बारे में सोचना बंद कर और ये सोच कि तुम्हें दो दिन बाद जाना कहाँ है, समझा?
अरे जग्गू, मैं समझा रहा हूँ ना, गर्म क्यों होता है? देख चंदर, ये मुंबई है और मुंबई कभी सोती नहीं है। यहाँ रात को भी उतने ही लोग काम करते हैं जितना कि दिन में, समझा?
पर वो प्लेटफॉर्म पर पुलिस वाला तेरे पीछे क्यों भाग रहा था?
अरे यार देख, पैसा कमाने के लिए हर तरह का काम करना पड़ता है। अब कोई काम किसी को अच्छा लगता है और किसी को बुरा। बस उस पुलिस वाले को मेरा काम पसंद नहीं था, इसलिए वो मेरे पीछे भाग रहा था।
मतलब तू कुछ गलत?
चंदर, तू मेरे बारे में सोचना छोड़ और अपनी नौकरी के बारे में सोच, ठीक है? और हाँ, हमारे जाने के बाद ये दरवाजा अंदर से बंद कर लेना।
हाँ ठीक है।
ये लीजिए गर्मा गर्म चाय।
अरे बेटा, तुमने क्यों तकलीफ की, कविता चाय बना लेती।
माँ, राजेश हर काम में मेरी मदद करते हैं।
वैसे ये सब ठीक नहीं है कविता।
क्या माँ?
घर का काम तो तुम्हें को करना चाहिए ना।
माँ जी, जब हम एक दूसरे के जीवन साथी बनने वाले हैं तो ये भी तो जरूरी है कि हम एक दूसरे की जिम्मेदारियाँ भी बांटें।
वो सब तो सही है, पर फिर भी।
तो बस माँ जी, चाय मैंने बनाई या कविता ने, उससे क्या फर्क पड़ता है?
सचमुच बेटा, कविता ने जितना तुम्हारे बारे में बताया था ना, तुम उससे कहीं ज्यादा अच्छे हो।
अच्छा बेटा, तुम्हारे माँ बाप कहाँ रहते हैं? आखिर रिश्ते की बात तो उन्हीं से होगी ना।
पिताजी वो राजेश के माता पिता नहीं हैं।
क्या?
हाँ माँ जी, मैं अनाथ हूँ।
तो फिर ये पढ़ाई लिखाई, ये नौकरी, ये सब?
पिताजी, जब मैंने होश संभाला तो खुद को अनाथालय में पाया। वहाँ के फादर पीटर बहुत अच्छे थे, वो मेरे जैसे कई सारे अनाथ बच्चों का ख्याल रखते थे। थोड़ा बड़ा हुआ तो अनाथालय से बाहर निकला, काम किया, साथ में पढ़ाई भी की। बस ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और आज जो कुछ भी हूँ आपके सामने हूँ।
सचमुच बेटा, तुम्हारी मेहनत काबिले तारीफ है। पता नहीं ईश्वर तुम जैसे नेक बच्चों के सिर से माँ बाप का साया क्यों छीन लेता है।
लेकिन पिताजी, अगर ईश्वर माँ बाप छीन लेता है तो बाद में लौटा भी देता है। अब आप कविता के माता पिता हैं तो मेरे भी तो माता पिता हुए ना।
वो तो है बेटा।
तो चलिए अब फटाफट चाय पी लीजिए वरना ठंडी हो जाएगी और कविता मुझे ठंडी चाय पिलाने के लिए बहुत डांटेगी।
हे भगवान, इस चंदर ने बंबई लाकर अजीब मुसीबत में डाल दिया। मुझे लड़के कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। कभी कभी तो मन करता दिल्ली वापस चला जाऊं, लेकिन चंदर को यहां अकेला छोड़कर नहीं, ये भी सो गया लगता है। चंदर, ए चंदर।
हाँ।
सो गया क्या यार?
क्या हुआ गज्जू?
यार चंदर, पता नहीं क्यों मुझे लोग सही नहीं लग रहे हैं।
यार सही तो मुझे भी नहीं लग रहे हैं, लेकिन दर्शन को मैं जानता हूँ, वो बाकी लोगों जैसा नहीं है। काफी अच्छा लड़का है पर इसके साथ ही थोड़े अजीब है।
यही तो मैं भी कह रहा हूँ। लेकिन जब तूने दर्शन से उसके काम के बारे में पूछा तो उसने कैसे टाल दिया, पता है ना तुझे? यार मुझे तो डर लग रहा है ये लोग कुछ गलत काम कर रहे हैं।
छोड़ना यार, अब हमें क्या लेना उसके काम से। यार मुझे बहुत नींद आ रही है, बड़ी अजीब सी घुटन है यहाँ पर।
हाँ यार, चले काम करते हैं, थोड़ी देर बाहर टहलने चलते हैं यार।
हाँ यार चल।
चला
देखा दोस्तों, चंदर अपने सपनों के पीछे मुंबई तक चला आया, पर क्या मुंबई में चंदर के सपने पूरे हो जाएंगे?
और क्या अब उसकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी?
या एक बार फिर चंदर घिर जाएगा किसी नई मुसीबत में?
ये सब आपको पता चलेगा हमारी आगे की कहानी में। लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं लोगों से जो बड़े शहर के बारे में अपनी अलग अलग राय रखते हैं।
जब मैं गांव से पहली बार शहर आया तो मैंने ये देखा, यहाँ पर गांव से काफ़ी अलग माहौल है। गांव में ये शोर शराबा नहीं होता, यहाँ पर बहुत शोर शराबा रहता है, ट्रैफिक रहता है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। गांव में ज़्यादातर लोग अनपढ़ होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते, जबकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग शिक्षित होते हैं। वहाँ पे स्कूल नहीं थे, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े स्कूल है, पढ़ने के लिए बहुत सारी बुकें होती है, कंप्यूटर नॉलेज भी है यहाँ पर, जिससे इंसान अपना जीवन अच्छा व्यतीत कर सकता है।
जब मैं पहली बार दिल्ली शहर में आई तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि मैं इस शहर में किसी को ना तो जानती थी ना किसी को पहचानती थी, क्योंकि मुझे इस शहर के बारे में मालूम नहीं था। इसलिए मुझे ये शहर शुरू में बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जब मैं यहाँ हर किसी से जान पहचान बढ़ी और आना जाना शुरू हुआ, तब ये शहर भी अपने गाँव जैसा लगने लगा।
मुझे शहर में आके बहुत अजीब सा लगा, क्योंकि मैं पहली बार शहर आया हूँ और मुझे यहाँ पे वातावरण, यहाँ का माहौल, भीड़ भाड़ से मैं काफ़ी दिक्कत में आ गया। लेकिन जब मेरी नौकरी लगी और जब मैं नौकरी करने लगा तो धीरे धीरे मैंने अपनी आदतों को सुधारा और इस समय मैं बड़ा सही से रह रहा हूँ और मुझे कोई परेशानी नहीं है और आराम से नौकरी कर रहा हूँ और शहर में भी आराम से रह रहा हूँ।
गांव की जो ज़िंदगी है वो अलग है। गांव में की है कि सुबह उठना है आराम से और थोड़ा बहुत काम धंधा है वो करना है। यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर हर आदमी दौड़ रहा है, हर आदमी कुछ ना कुछ उद्योग कर रहा है, कोई काम सीख रहा है, कोई काम पे जा रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, कुछ अलग ही मतलब वातावरण दिखाई दे रहा है।
शहर का जादू रे कर बेकाबू रे, शहर में जो जाए लौट के न आए।
गाँव बड़ा प्यारा लगे, शहरों से न्यारा लगे, बात जो गाँव में है पीपरा की छाँव में है, शहर में वो कहाँ रे।
शहरों का मरा जा रे,
तो दोस्तों अभी आप सुन रहे थे लोगों की राय, जिसे जानने की कोशिश की हमारे सामुदायिक संवाददाताओं ने।
दोस्तों शहर ना जाने क्यों सभी के लिए एक जैसा नहीं होता। किसी को ये ढेर सारी खुशियाँ देता है तो किसी को देता है कुछ ऐसी कड़वी यादें जिन्हें याद करने के बाद दोबारा वो इसकी तरफ मुड़कर देखना भी पसंद नहीं करते।
जी हाँ दोस्तों, नरेन का इशारा है हमारे कुछ ऐसे प्रवासी दोस्तों की तरफ जिनका शहर का अनुभव अच्छा नहीं रहा और उन्हें वापिस गाँव लौटना पड़ा। आइए सुनते हैं आखिर शहर में उनके साथ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वो कभी दोबारा शहर जाने के बारे में नहीं सोचते।
आपका परिचय?
मेरा नाम चंद्र कृष्ण पुनीर है, मैं छोटा का रहने वाला हूँ, मेरी उम्र 34 साल है।
आप पहले कहाँ काम करते थे?
पहले मैं बम्बई में था और होटल में काम करता था।
आपने क्यों काम छोड़ दिया वहाँ पर?
वहाँ पर क्योंकि मेरी कुछ तबीयत खराब हुई थी, इसी कारण मैंने वहाँ पे काम छोड़ा है। और मैं वहाँ पे काफ़ी 10-12 दिन तक वहीं भटकता रहा, क्योंकि मैं जहाँ पे पहले था जलगांव में था, मैं महाराज जलगांव में, तो वहाँ से मेरी तबीयत खराब हुई तो मैं घर का रास्ता भूल के दूसरी ट्रेन पकड़ के वहाँ से सीधे बम्बई चला गया। और बम्बई में मैं काफ़ी भटकता रहा 10-12 दिन तक, और न ही मेरा अपने घर वालों से कोई कॉन्टेक्ट हो पाया। घर वालों ने काफ़ी ढूंढ की, वहाँ पे उन्होंने जानकारी ली, जहाँ मैं पहले होटल में काम करता था वहाँ होटल के स्टाफ से ली, उन्होंने कहा वो तो यहाँ से काम छोड़ के चले गए हैं। उसके बाद जब दिमाग संतुलित हुआ तो वापस ही रहा था, मैं बीटी आया और वहाँ से एक ट्रेन निकलती नागपुर के लिए, उस पर बैठा तो करीबन सुबह की 4 बजे की टाइम था, उस टाइम मैं जलगाँव पहुँचा। फिर जो मेरा स्टाफ है वहाँ पे, कुछ गढ़वाली लोग भी वहाँ पे, कभी लड़के काम करते हैं जलगाँव में, उन्होंने घर वालों को खबर की कि हाँ भाई ये यहाँ पे पहुँच चुका है। इसी तकलीफ होने के कारण ही मैं फिर दोबारा वहाँ जाना नहीं चाहता।
सपनों का शहर हो, खुशियों भरा सफर हो, सपनों का शहर हो, खुशियों भरा सफर हो, कोई डर ना हो, कब आएगी शहर वो।
और आइए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट यानी के काम की बात की तरफ।
अंजलि, बड़े शहरों में रहने के लिए जगह तलाशना एक बड़ी समस्या है।
और नरेन, अगर शहर अनजान हो तो ये काम और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है।
और अक्सर हमारे प्रवासी दोस्त काम की तलाश में शहर जाते समय अपने रहने का स्थान, उन्हें नौकरी कहाँ पर मिल सकती है, वहाँ रहने के लिए उन्हें कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी, इन सब बातों के बारे में जाँच पड़ताल करना भूल जाते हैं,
जिसकी वजह से उन्हें शहर में काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है।
तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुंबई की कुछ ऐसी जगहों के बारे में जहां आपको आसानी से रहने के लिए जगह मिल सकती है, साथ ही वहां का किराया भी आपके बजट में हो सकता है।
जी हां, मुंबई के कुछ इलाके जैसे मुलुंड, घाटकोपर, इंदिरा नगर, पवई, मलाड, नालासोपारा, भांडुप, लोकमान्य नगर, विक्रोली, ठाणे, सावरकर नगर आदि, ये कुछ ऐसी जगहें हैं जहां आपको 500 रुपए से लेकर 1500 रुपए के बजट में रहने के लिए जगह मिल सकती है।
लेकिन सबसे जरूरी बात ध्यान रखने वाली ये है कि आपको यहाँ किराए पर जगह लेने से पहले कुछ निश्चित राशि एडवांस में जमा करवानी पड़ती है।
और इसके लिए हम आपसे कहेंगे कि जिस व्यक्ति को आप एडवांस राशि दे रहे हों, उसके बारे में पहले ही अच्छी तरह से छानबीन कर लें।
साथ ही दोस्तों, मुंबई में कई झुग्गियां और चौल ऐसे भी हैं जो कि गैर कानूनी हैं, यहां तक कि उनमें उपलब्ध करवाई जाने वाली सुविधाएं जैसे कि पानी, बिजली आदि भी गैर कानूनी है।
इसलिए जहां आपको रहने के लिए जगह मिल रही है, उस स्थान की भी पूरी छानबीन कर लें, वरना आपको किसी भी समय वहां से बाहर निकाला जा सकता है।
तो दोस्तों, ये तो थी आज की काम की बात। अगर आप इस संबंध में या किसी और विषय में किसी भी तरह की जानकारी चाहते हैं, तो आप हमें अपना सवाल हमारे नंबर पर SMS कर सकते हैं।
नंबर है 9197176723। तो श्रोताओं, काम की बात भी हो गई। अब आपको सुनवाते हैं एक मजेदार गढ़वाली गाना।
बुत गुरु मान्यो मेरी गल्या पुनम, सची
और दोस्तों अब समय हो चुका है जब हम पढ़ेंगे आपके खट्टे मीठे अनुभवों से भरी आपकी चिट्ठी।
लेकिन नरेन उससे पहले हम शामिल कर रहे हैं एक संदेश को जो अमिता रावत ने चंबा से अपने चाचा जी के लिए दिया है, क्योंकि इनके चाचा पिछले 7 सालों से मुंबई में नौकरी कर रहे हैं और एक बार भी घर नहीं आए हैं।
अमिता रावत जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपके चाचा जी ये प्रोग्राम सुन रहे होंगे और जल्द ही वो आप लोगों से मिलने घर आएंगे।
और नरेन इसके अलावा एक और संदेश है हमारे पास अमीरुल का। ये मूल रूप से बिहार से हैं, लेकिन अभी मुंबई में प्रवासी हैं और काम करते हैं, पर इन्हें मुंबई की जिंदगी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और बिहार की बहुत याद आती है।
अमीरुल जी, आपकी बात से हम भी सहमत हैं, हर प्रवासी को अपने घर की बहुत याद आती है।
और नरेन बढ़ते हैं हम अपनी आज की चिट्ठी की ओर।
और दोस्तों आज के हमारे विजेता हैं वरुण कुमार सिंह, जिन्होंने दिल्ली के शकरपुर से हमें चिट्ठी लिखी है।
ये लिखते हैं कि 2003 की घटना है, जब मैं अपने घर सोनपुर से दिल्ली शहर की ओर चला। इससे पहले मेरे बड़े भाई और मेरी माँ की हेपेटाइटिस बी के कारण मृत्यु हो गई थी। मैं भी हेपेटाइटिस बी रोग से ग्रस्त हूँ। मेरे पिताजी को पेंशन तो मिलती थी, लेकिन इन खर्चों के बावजूद मेरे बड़े भाई और मेरी माँ को बचाया नहीं जा सका। 1998 में मैंने B.R. अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से इतिहास विषय में स्नातकोत्तर प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया। मुझे लगता था कि अगर पिता की अचानक मृत्यु हो जाती है तो ना तो मेरे पास रुपए हैं कि मैं इलाज करा पाऊँ और ना ही मेरे जानने वाले मुझे अपने यहाँ आश्रय देंगे। इसीलिए मैंने ये निश्चय किया कि अपने पैरों पर खड़ा होऊंगा और इलाज के लिए रुपए का भी उपार्जन करूंगा। इसीलिए मैं दिल्ली आ गया। 5 सालों से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में इलाज करवा रहा हूँ, फिर भी रोग ठीक नहीं हो पाया है। शुरू में तो मेरे पास रुपए कम थे, इसलिए मैं नौकरी के नाम पर प्लेसमेंट एजेंसी को फीस दे आया। बाद में पता चला कि मैं ठगी का शिकार हो गया था, क्योंकि वो प्लेसमेंट ऑफिस बंद हो गया था। उसके बाद मुझे एक प्राइवेट मीडिया हाउस में काम मिला। मैंने 1.5 साल तक वहाँ काम किया, साथ ही ट्यूशन, प्रूफ रीडिंग आदि का काम करके किसी भी तरह खर्चा निकालता रहा। इसके बाद 9,000 रुपए मासिक पर एक पत्रिका में मुझे सब एडिटर पद का कार्य मिल गया। अब मुझे किसी निकट संबंधी से रुपए के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ता है। आपके कार्यक्रम के माध्यम से मैं श्रोताओं को ये संदेश देना चाहूँगा कि अपने घर के बजट के खर्चों में वो चाहे जिस प्रकार की भी कमी हो करें, लेकिन अपने बच्चों की शिक्षा के बजट पर किसी भी प्रकार की कटौती ना करें। अगर आप अपने बच्चों को उचित शिक्षा दे देते हैं तो आपके बच्चे के लिए वही बैंक बैलेंस है।
वरुण जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। फिलहाल आपकी इस चिट्ठी के लिए आपको मिलता है एक खूबसूरत सा ट्रैवल बैग। और दोस्तों, वरुण जी की तरह आप भी ऐसा ही आकर्षक इनाम जीत सकते हैं। बस इसके लिए अपने खट्टे मीठे प्रवास से जुड़े अनुभवों को चिट्ठियों के जरिए हमें भेजते रहिए। पता है कार्यक्रम जब चले शहर की ओर, 177 बेसमेंट अशोका एनक्लेव, पार्ट 3, सेक्टर 35, फरीदाबाद, हरियाणा 121003।
इसके अलावा आप हमें अपने प्रवास से जुड़े खट्टे मीठे अनुभव ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है शहर की ओर @gmail.com।
बादल ये कैसा छाया, दिल ये कहाँ ले आया, सपना ये क्या दिखलाया है मुझको। हर सपना सच लगे, जो प्रेम अगन जले, जो राहदा सुने अपने मन की। यूं ही चला चल रहा है, यूं ही चला चल रहा है, कितनी हसीन है ये दुनिया। फूल सारे झमेले देख, फूलों के मेले बड़ी रंगीन है ये दुनिया।
और अब सुनते हैं वो बातें जो कहना चाहते हैं लोग अपने अपनों से।
मैं विनोद सिंह रावत बोलो छो तलविन वटी के, और मैं अपन माँ से संदेश दिन चाहो छो कि माँ अपन ख्याल रखे और काम काज को करे हर चपण चपण इन्हें उन्हें अपन फर्स्ट क्लास अपने शरीर पर ध्यान दे, यही मैं बस संदेश देना चाहूँ।
मेरा नाम अंजय बिजला छा, मैं बागी रहने वाली छो, और मैं अपनी सहेली ते मैसेज भेजना चाहो वो लव धारे रहने वाली छो। मैं भी तो बोल चाहता हूँ कभी भी नहीं तो फोन भी निकल जाए ना, से स्कूल बिटिन दूर हुए भी ना, मैं तो एक फोन भी निकली। मेरी दूसरी सहेली का फोन होना, दीपिका फोन बहुत होना, पर अगर वो मेरी आवाज़ का की सुन लगी तो जरूर मैं तो फोन करे।
मेरा नाम मुन्ना है, मेरा गांव का नाम ग्राम गुरफली है, जिला पौड़ी गढ़वाल का रहने वाला हूँ, और मैं अपने दोस्त को संदेश भेज रहा हूँ। मेरा दोस्त का नाम बंटी है, जिला पौड़ी गढ़वाल में रहता है, ग्राम गुरफली का रहने वाला है। और बंटी, आपने कहा था कि जब घर आओगे तो क्रिकेट का सामान लेके आना, और लेकिन दोस्त मैं घर आ नहीं पा रहा, किसी के हाथ भिजवा दूंगा।
नमस्ते, मैं चंदा शर्मा वसई से बोल रही हूँ। मैं अपने दादी को मैसेज देना चाहती हूँ। मेरी दादी पौड़ी गढ़वाल चुल्ला गांव में रहती है। दादी, आपकी बहुत याद आती है। मुझे मालूम है आपने अपना जवान बेटा खोया है, आपको क्या फील होता होगा, अब कितनी तकलीफ होती होगी, लेकिन हम लोग भी आपको बहुत याद करते हैं। हम लोग भी क्या कर सकते हैं, अपने अपने घर गृहस्थी में हम लोग सब बिजी हो गए हैं, आपका ध्यान नहीं दे पाते हैं, लेकिन हम हमेशा आपको याद करते हैं और करते रहेंगे। धन्यवाद।
तो ये थे आज के संदेश, और अगर आप भी अपना कोई संदेश भेजना चाहते हैं तो अपना नाम और पता हमें SMS कर सकते हैं।
हमारा नंबर है 9197176782।
दोस्तों, प्रवास से जुड़ी छोटी से छोटी महत्वपूर्ण जानकारी भी आपके और हमारे प्रवासी दोस्तों के लिए मददगार साबित हो सकती है। ऐसे में अगर आपके पास प्रवास से जुड़ी कोई जानकारी है तो आप उसे हमारे कार्यक्रम के जरिए बाकी प्रवासी दोस्तों के साथ बांट सकते हैं।
साथ ही आप मिलजुल कर अपना एक प्रवासी क्लब तैयार कीजिए, और अगर आप पहले से ही किसी प्रवासी क्लब के सदस्य हैं तो उसकी गतिविधियों की जानकारियां भी आप हमें चिट्ठियों के जरिए बता सकते हैं।
इसी के साथ हम अपने सहयोगियों हेवलवाणी चंबा, मंदाकिनी की आवाज़ भड़ज, और दिल्ली और मुंबई के अपने सभी सामुदायिक संवाददाताओं का भी धन्यवाद करना चाहेंगे।
और हाँ दोस्तों, हमें प्रवास से जुड़े अपने अनुभव के साथ चिट्ठियां जरूर लिखते रहिएगा और ईमेल भी करते रहिएगा। हमारा ईमेल आईडी और पता आप एक बार फिर नोट कर सकते हैं। ईमेल आईडी है shaherkior@gmail.com, यानी shaherkior@gmail.com।
और पता है कार्यक्रम जब चले शहर की ओर, 177 बेसमेंट अशोका एनक्लेव पार्ट 3, सेक्टर 35, फरीदाबाद, हरियाणा 121003।
और दोस्तों, अब वक्त आ गया है आपसे इजाजत लेने का,
लेकिन अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।
नमस्कार।
चले शहर की ओर।